हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। धृति जैसे ही चुप हुई, कुश के साथ मृणाल वहाँ पहुँच गया, जिससे माधुरी आगे कुछ कह न सकी। मृणाल ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर धृति की ओर निगाहें घुमाते हुए बोला, धृति तुम ठीक हो? हाँ, धृति ने तुरंत ही सर हिलाया। फिर यूं अचानक बाहर आने के लिए माफ़ी मांगने के बाद कुश को अपनी गोद में उठाए कार की ओर बढ़ गई। मृणाल और माधुरी कुछ पल जाती हुई धृति को देखते रहे, फिर मृणाल की निगाहें माधुरी की ओर घूम गई। माधुरी, क्या बात है, कोई परेशानी है? धृति वाकई ठीक है ना? भगवान जाने वो ठीक है या मुझे पागल करना चाहती है, माधुरी ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर मृणाल चौंक गया। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो अभी चलते हैं, कभी फुर्सत में सब बताऊंगी तुम्हें। मृणाल ने सर हिलाया और दोनों वहां से निकल गए। धृति ने आज कुश को अपने साथ रोक लिया था और उसका नतीजा ये हुआ कि जहां उनकी बहस रुकी थी, माधुरी को उसके आगे बात करने का मौका नहीं मिला। धृति ने भी फैसला कर लिया कि अब छुपेगी नहीं, बल्कि इस परेशानी का डटकर सामना करेगी। अगली सुबह नॉर्मल सी थी। सुबह जल्दी उठकर उसने ब्रेकफास्ट रेडी किया, खुद ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई, कुश को भी तैयार किया। मृणाल ने उनके साथ ही ब्रेकफास्ट किया, फिर सब साथ ही घर से निकले। धृति को उसके ऑफिस के बाहर छोड़कर तीनों आगे बढ़ गए। धृति लॉबी और कॉरिडोर से होते हुए ग्राउंड फ्लोर में बने अपने कैबिन में चली गई। अर्णव के ऑफिस जैसा शानदार कैबिन तो नहीं था, छोटी सी जगह थी जहां एक डेस्क चेयर लगी थी, सिस्टम भी था और फाइल्स की रैक में कई फाइल्स रखी थीं। ऑफिस भी ज्यादा बड़ा नहीं था। गेट से एंटर होते ही लॉबी थी, कॉरिडोर से होते दो कैबिन्स बने थे और अंदर का हिस्सा कारखाना था जहां कारीगर काम करते थे। हैंडमेड ऊनी कपड़ों की फैक्ट्री, जहां से छोटे मोटे कपड़ा व्यापारी और फुटकर व्यापारी को ऊनी कपड़े सप्लाई किए जाते थे। धृति पिछले ढाई सालों से यहां का सारा काम संभाल रही थी। मटेरियल का आना, सेलिंग, मेकिंग सब वही देखती थी। जिन मैडम ने इस कारखाने की शुरुआत की थी, अब वो काफी बूढ़ी हो गई थीं, तो बहुत कम ही यहां आती थीं और दिन ब दिन कारखाना भी लॉस में जाने लगा था। पर कोशिश अब भी जारी थी और अभी बमुश्किल सारे खर्चे निकालने के बाद थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हो रहा था, जिसके भरोसे धृति के साथ यहां काम करने वाले बाकी लोगों का घर चल रहा था। अभी धृति बैग टेबल पर रखकर अपनी चेयर पर बैठने जा ही रही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी। आ जाइए काका, धृति जैसे जानती थी कि दरवाजे पर कौन है। जैसा कि उसका अंदाजा था, दरवाजा खुला और एक वृद्ध आदमी ने कैबिन में कदम रखा। बाल और दाढ़ी मूछ पर सफेदी छाई थी, पर शरीर तंदुरुस्त था। बिटिया, आपको साहब ने बुलाया है, उन काका की बात सुनकर धृति चौंक गई और उलझन भरी निगाहों से उन्हें देखने लगी। साहब? कौन से साहब? नए साहब आए हैं बिटिया, मालकिन ने कंपनी उनको बेच दी है और अब से वही साहब सब काम देखेंगे। काका ने धृति को स्थिति से अवगत करवाया, पर धृति कंपनी के बिकने की बात सुनकर और ज्यादा चौंक गई। मैडम ने कारखाना बेच दिया, कब हुआ ये? और नए साहब कब से आ रहे हैं? मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, कौन जाने कब बेचा, पर कल नए साहब आए थे और साथ में मैडम भी आई थीं। पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थीं, आप तो कल आई नहीं थी, तो बाकी सबको साहब से मिलवाकर बताया कि अब से काम वही देखेंगे। साहब ने आपको जल्दी अपने कमरे में बुलाया है। अब भी धृति को इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक कंपनी का बिकना उसके दिमाग में खटक गया था, उलझ सी गई थी वो, पर अब बॉस का ऑर्डर था तो मानना तो था ही। उसने सर हिलाया, जी काका, मैं जाकर मिल लेती हूँ। धृति ने कुछ पल सोचा, फिर सर झटकते हुए अपने कैबिन से बाहर निकल गई। बगल में ही दूसरा कैबिन था, उसने गेट नॉक किया और अंदर से एक भारी आवाज आई, कम इन। धृति ने हैंडल घुमाया और कैबिन के अंदर चली आई। सामने चेयर पर कोई बैठा था, पर उसका चेहरा फाइल से ढका हुआ था। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी, कल मैं किसी पर्सनल रीजन की वजह से लीव पर थी तो आपसे मिल नहीं सकी। आई एम धृति, मैडम के बाद यहाँ का सारा काम मैं ही देखती हूँ, काका ने बताया कि आपने मुझे बुलाया था। धृति ने फॉर्मली अपना इंट्रो देते हुए बात शुरू की। इस दौरान दूसरे तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। धृति अपनी बात पूरी करने के बाद सामने से रिस्पांस का इंतजार करने लगी। कुछ पल खामोशी से बीते, फिर एक जानी पहचानी सी आवाज धृति के कानों से टकराई और वो बुरी तरह चौंकते हुए सामने देखने लगी। हेलो स्वीटहार्ट, धृति ने जैसे ही निगाहें सामने की ओर उठाई, नज़रें वहां बैठे अर्णव के चेहरे पर जाकर ठहरी। धृति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वाकई उसके सामने अर्णव बैठा है। आप, धृति ने बेयकीनी से उसे हैरानगी से कहा। जवाब में अर्णव ने तिरछी मुस्कान लबों पर सजाते हुए हामी भर दी। हाँ, मैं। इस ऑफिस और तुम्हारा न्यू बॉस, नाम तो जानती ही होगी। धृति जो अर्णव को सामने देखकर हैरत में थी, उसका गुरूर भरा अंदाज देखकर उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करती हूँ? और यहाँ किस इरादे से आए हैं आप? इरादे तो मेरे बड़े नेक हैं। असल में तुमसे उस रात पार्टी में मिलने के बाद मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी जागी कि तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो, मेरे बिना तुम्हारे 3 साल कैसे बीते। बस उसी की थोड़ी छानबीन करवाई तो यहाँ का पता हाथ लग गया। पता चला कि कंपनी घाटे की ओर बढ़ रही है, इसकी परफॉर्मेंस भी डाउन जा रही है, जिसके कारण इस कंपनी की ओनर जल्दी ही कंपनी बंद करने वाली थी और मुझे तुम्हारे पास रहने के लिए बहाने की जरूरत थी। अपने दिन का ज्यादातर वक्त तुम काम में बिताती हो तो काम सबसे बेहतर बहाना साबित होता है, इसलिए कंपनी खरीद ली और अब एक बार फिर तुम मेरे लिए काम करने वाली हो। अर्णव ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया, पर उसका जवाब सुनकर धृति बुरी तरह चौंक गई। पहले तो वो आँखों की पुतलियाँ फैलाए हैरान परेशान सी उसे देखती रही, फिर उसकी मुस्कुराहट देखकर खीझ उठी। कितने बुरे हैं आप, मेरा पीछा करते करते यहाँ तक चले आए। ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे कि आप ऐसे जबरदस्ती मेरे सर पर सवार होंगे। क्यों कर रहे हैं आप ये सब, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ना तो मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने आया हूँ और ना ही तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ। 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद तुम मुझे वापस मिली हो, तो मैं बस तुम्हें अपनी आँखों के सामने रखना चाहता हूँ। अर्णव का ये जवाब सुनकर धृति आँखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगी। कोशिश तो बहुत अच्छी की आपने, पर अफसोस की मैं आपको आपकी किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं होने दूंगी। आपने ये कंपनी खरीदी ताकि मैं आपके साथ काम करूं और आपको मौका मिलता रहे मुझे टॉर्चर करने का, पर अफसोस की ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ काम करेंगे तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। आज ही अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर जाऊंगी, कहीं और काम ढूंढूंगी, चाहे तो घर बैठ जाऊंगी, पर यहाँ एक ऑफिस में आपके साथ किसी कीमत पर काम नहीं करूंगी। एज योर विश, मुझे तो इससे कोई एतराज नहीं, पर अपना रेजिग्नेशन लेटर देने से पहले एक बार ध्यान से उन लोगों के बारे में भी सोच लेना जो यहाँ काम करते हैं और जिनका परिवार इस कंपनी पर आश्रित है, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि ये कंपनी मैंने तुम्हारे वजह से खरीदी है। अगर तुम ही यहाँ नहीं रहोगी तो मेरे पास भी इस लॉस में डूबती कंपनी को चलाने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। दैट मीन्स जैसे ही तुम रिजाइन करोगी, इस कंपनी के बाहर ताला लग जाएगा और यहाँ काम करने वाले सभी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनसे उनका इनकम का सोर्स छिन जाएगा, जिसकी वजह तुम होगी। धृति को रोकने के बजाय अर्णव ने उसे बड़ी ही आसानी से इजाज़त दे दी, जिसकी उम्मीद धृति को नहीं थी, इसलिए पहले तो वो चौंक गई, पर अर्णव की लापरवाही से आगे कही बातों को सुनकर गुस्से से उसका खून खौल उठा। तो ये प्लानिंग है आपकी, अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप इन इनोसेंट लोगों को मोहरा बना रहे हैं ताकि इनके जरिए मुझे मजबूर कर सके यहाँ रुकने के लिए।
अर्णव ने धृति के गुस्से से लाल चेहरे को देखा और तुरंत ही इनकार में सर हिला दिया। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी है, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, बस तुम्हें पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ ताकि आगे पीछे का सोचकर कोई भी फैसला लो। धृति को अर्णव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि खुनमस में वो दांत किटकिटाने लगी थी। वो तो उसका बस नहीं चला, वरना अभी अर्णव को कच्चा ही चबा जाती। जबकि अर्णव को उसे यूं चिढ़ते और गुस्से से लाल पीला होते देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। तो क्या फ़ैसला लिया तुमने, कहो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं टाइप कर दूं। अर्णव जानकर उसे चिढ़ा रहा था और उसके दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से धृति सर से लेकर पैर तक जल उठी थी। टू बी कंटिन्यूड।